आप आए हैं यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। स्वागत करता हूँ आप सबका। आज शुक्रवार है, दिल से आप सभी का स्वागत बारंबार है, बारंबार है, बारंबार है। आप करतल ध्वनि से अपना ही स्वयं का अभिनंदन कर लें। और मैं पार्वती बहन जी को भी आमंत्रित करूंगा मंच पर। एक सुंदर उद्देश्य के साथ हम सब यहाँ आए हैं। प्यारे बाबा ने, हमारे बड़ों ने हमें सुंदर अवसर दिया है। सचमुच भट्टी में आना, तपना, ये भाग्य की बात होती है। सारे वर्ष हम सेवाओं में रहते हैं और वैसे भी लॉकडाउन के बाद आप में से बहुतों का पहली बार मधुबन बेहद घर में आना हुआ होगा। एक लंबा अंतराल, एक ऐसा अंतराल जिसमें एक क्या कहें इंतजार हम सबके मन में थे कि कब हम मधुबन पहुंचें, कब मधुबन के चारों धामों की यात्रा हो, मधुबन के अन्य तीर्थों में हम जाएं और साथ ही अपने बड़ों से रूबरू मिलें। तो ये जो एक सुंदर लंबे समय की हमारी चाहना थी, बाबा ने इस भट्टी में पूर्ण की है। तो अभिनंदन आप सभी का इस बेहद घर में, और साथ ही साथ जिस सुंदर ध्येय को लेकर के आए हैं वो ध्येय भी बाबा जरूर हम सबको सामने रखते हुए, शक्ति भरते हुए पूर्ण करने में मददगार हैं। और हमारे सभी बड़ों का आशीष हमारे साथ है। मंच पर हमारी दोनों बहनें विराजमान, सूर्य भाई जी का भी जल्द ही आगमन होगा। हमारी आदरणीय दीदी हमेशा दिल में सुंदर भाव रखे हुए कि हमारे सभी भाई बहनें भारतवर्ष के जहां जहां से भी हैं ज्ञान सरोवर पधारें और अपने आप को सुंदर ज्ञान रत्नों से सजा करके, योग की सुंदर अवस्था बना करके अचल अडोल बने, बाप समान बने, ऐसी उनकी सदैव कामना रहती है। तो दीदी भी आज सूक्ष्म में हम सबके बीच उपस्थित हैं। तो इन सभी दिव्य विभूतियों की उपस्थिति में मैं स्वागत गीत के लिए प्रथमतः आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे नितिन भाई को। आप जानते हैं जैसे हमारे दिवस की शुरुआत प्यारे बाबा से होती है, वैसे ही हमारे हर कार्यक्रम की शुरुआत बाबा की याद के बाद मधुरवाणी ग्रुप से होती है। तो आज नितिन भाई हमारे सम्मुख हैं। आप जानते हैं नितिन भाई बाबा के अनेक गीत, प्यारे प्यारे गीत अपनी मधुर आवाज में गाते हैं और हम सबको बाबा की याद में मग्न करते हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से हमारे नितिन भाई का स्वागत करेंगे और हम सबके स्वागत के लिए इस भट्टी में नितिन भाई एक सुंदर गीत हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। नितिन भाई
सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्ण भक्ति का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भक्ति का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। दीवाने दिन बाबा फिर से हमें दिखाते हैं, सदावर सुखी भक्ति चार दिन कराते हैं। बज रहे विनाश के है उधर नगाड़े, दिख रहे इधर है नवयुग के नजारे। अग्रिम दल के पतरंग नाया है, स्वर्णिम भक्ति का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा तुंग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागत शत स्वागत शुभ स्वागत शत स्वागत। अंतर्मुख हो आओ हम योग का करें प्रयोग, मनसा सेवा सकाश में मिलके करें सहयोग। शांत और कांत मिला तप का ये मौका है, उड़ो पंछियों उड़ने से अब किसने रोका है। वाह बाबा वाह ड्रामा दिल में अब गाया है, स्वर्णिम भक्ति का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागत शत स्वागत शुभ स्वागत शत स्वागत। भक्ति हो जो यादगार बन जाए, और भक्ति की कोई दरकार न रह जाए। योग भक्ति की ज्वाला आओ ऐसी जलाए, संसार से पुराने संस्कार सब जल जाए। निर्विघ्न रहने करने का मौसम आया है, स्वर्णिम भक्ति का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भक्ति का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागत शत स्वागत शुभ स्वागत शत स्वागत शुभ स्वागत शत स्वागत शुभ स्वागत शुभ स्वागत।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुंदर गीत के माध्यम से जिसमें बहुत सुंदर भाव, हम सब एक बार जोरदार पुनः तालियों से नितिन भाई का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत सुंदर भाव हम सबके सम्मुख रखे हैं। कि अब ऐसी भट्टी हो जो किसी और भट्टी की दरकार न रह जाए। हम सब ऐसे गहन तप करने के लिए बाबा के इस सुंदर घर में पधारे हैं, तो इस अवसर का भरपूर हमें लाभ उठाना है। सुंदर वाणी से अभिनंदन के बाद, गीत के बाद, अब मैं सुमन बहन जी की ओर चलूंगा जो आप सब की वाणी से और साथ ही इस भट्टी के सुंदर लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगी। आदरणीय सुमन बहन जी, बाल्यकाल से ही बाबा की गोद में पल रहे, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपना पूरा जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। आप एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और ज्ञान सरोवर में जो भी सुंदर भट्टी आयोजित हो रहे हैं, आप उसके प्रारंभ से अंत तक सबके साथ रहते हुए उन सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत लगी रहती हैं, तो आपके अथक परिश्रम और साथ ही साथ अपने नाम के अनुरूप सबको प्रेरित करते हुए कि हम भी अपने जीवन को सुमन बनाएं, अपने जीवन के जो कांटे हैं उन सब कांटों को दूर करते हुए बाबा के सम्मुख सूर्यमुखी पुष्प की तरह खिले रहें, ऐसे सुंदर अपने जीवन से हम सबको प्रेरित करने वाले और अपने हृदय में हम सबकी उन्नति के सुंदर भाव लिए हुए आदरणीय सुमन बहन जी को मैं अनुरोध करूंगा कि हम सबका वाणी से स्वागत के साथ इस भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को भी हमारे सम्मुख रखें। सुमन बहन जी।
ओम शांति। मंचासीन परमादरणीय पार्वती बहन जी, संजय भाई, रुपेश भाई और सभा में उपस्थित होली अंस, बरेली से और अलग अलग जगह से जो भाई बहने आए हैं बाबा के घर में, आपके ही घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके। अभी तक जो भी भट्टियां चली, पिछले साल से ही भट्टियां चलना होना शुरू हो गया यहाँ इस ज्ञान सरोवर परिसर में, और हार्मनी हॉल में हुआ करता था सबसे पहले जब शुरू किया लास्ट ईयर, तो बहुत ही छोटे ग्रुप्स आ रहे थे। मेडिटेशन हॉल में भी, यहाँ इस हॉल में भी थोड़े बहुत किया, फिर बाद में ग्रुप जब बढ़ना शुरू हो गया तो हार्मनी हॉल में कर रहे थे, लेकिन पुनः इस बार यहाँ छोटे ग्रुप में, छोटा परिवार, सुखी परिवार बाबा कहते हैं, तो हम सभी मिलकर के अगले 3 दिन तक हम ऐसे गहन तपस्या हम करें, ताकि फिर ऐसे गीत में भी हमने सुना संस्कार परिवर्तन हो जाए। ऐसा लक्ष्य रखे इस भट्टी में कि जो भी पुराना संस्कार है, चाहे इतने सारा लंबा लिस्ट हमारे पास होगा कि ये संस्कार परिवर्तन करना है, संस्कार का परिवर्तन करना है, तो सभी संस्कार का एक साथ तो परिवर्तन हो नहीं सकता, हम सभी जानते हैं, है ना। तो एटलीस्ट कोई ऐसा एक संस्कार हम चूज करें जो हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं उसको परिवर्तन करने के लिए, तो उसको हम चूज करके जरूर उस पर हम मेहनत करें। और वातावरण का, संगठन का की मदद तो हमारे पास है ही है, और दिन भर जो हम तपस्या करेंगे, अच्छे अच्छे महारथी भाई बहनों से क्लासेस सुनेंगे, उसका भी हमें मदद जरूर मिलेगा। तो लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्य से लक्षण होगा, तो लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा हो और संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य हम जरूर रखें, ताकि वो अच्छी तरह जड़ से उस संस्कार का परिवर्तन हो जाए और जो नया संस्कार हम लेकर के यहाँ से जाए। और उसके लिए भी कुछ हमें अपना थोड़ा सा मेहनत करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हम सुनते आए हैं, कोई ब्राह्मण जीवन में एक साल से है, पांच साल से है, कोई दस साल से है, कोई बीस साल से है, तो अलग अलग समय अवधि से वो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं। तो अपने आप को देखें कि इतने सालों से जो ज्ञान में हम चल रहे हैं, अपने आप में कितना परिवर्तन आया है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है ब्राह्मण से, या फिर बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, फरिश्ते से फिर देवता बनना। तो जब हम सफर शुरू किए थे ब्राह्मण बनने की या फिर फरिश्ता बनने की सफर शुरू किए थे, कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? फरिश्ता बन गए हैं या फिर आधे रास्ते तक पहुंचे हैं, 50% पहुंचे हैं, 75% पहुंचे हैं, या अभी तक 20-25% तक ही पहुंचे हैं? अपने आप को चेक करने के लिए एक बहुत सुंदर मौका है कि भले अगले जन्म में हम देवी देवता बने, लेकिन इस जन्म में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, हम सभी के लिए बाबा ने ये लक्ष्य दिया है फरिश्ता बनना है। तो कितना हम बने हैं, दूसरों को कितना हम साक्षात्कार कर दिया दे पा रहे हैं फरिश्तेपन का, अपने व्यवहार में कितने फरिश्तेपन फरिश्तापन आया है, अपने आप में चेक करने की बात है। बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया है फरिश्ता किसको कहा जाता है, फरिश्ता कौन है। फरिश्ता वो है जो इस पुरानी दुनिया से किसी को कोई ऐसा रिश्ता न हो, फर्श से ऊपर उठा हुआ, माना बुद्धि एकदम उपराम। इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए कितना हम उपराम हैं, कमल पुष्प समान हैं, सब कार्य करते हुए भी क्या हमारा लगाव अभी तक कोई इंसान में, कोई आत्मा में, कोई चीज में, कोई अटका हुआ तो नहीं है, लटके हुए तो नहीं है। तो अपने आप में चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे, है ना? तो संगम युग का बहुत थोड़ा समय अभी बाकी है। यज्ञ का भी परिस्थिति आप देख रहे हैं, बाहर की भी परिस्थितियां आप देख रहे हैं। तो यज्ञ में भी दादियां, तो एक ही दादी अभी हमारे पास है जो आदि रतन है। तो अभी आगे चल करके क्या हो, बहुत ही अच्छा ही होगा, लेकिन फिर क्या भविष्य, कितने समय तक संगम युग होगा, बहुत कम समय है। तो इसीलिए अपने आप को बहुत ही जल्दी तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि बाबा की आशाएं हमारे ऊपर है, बहुत सारे आशाएं हमारे ऊपर है। बाबा की आशाओं को हमें पूर्ण जरूर करना है कि हम सभी इतने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, महसूस करते हैं, केवल हाँ बाबा कहते हैं आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, केवल सुनने तक तो नहीं है ना, महसूस हम सभी को होता है। कोई कुछ दिन पहले आए थे, कोई एक बहन आई थी, तो ऐसे बातों में ऐसे कह रही थी, बाबा तो इतने अच्छे अच्छे टाइटल्स देते हैं, इतना अच्छा नशे वाली बातें हमको सुनाते हैं, बाबा कहते हैं आप अति भाग्यशाली हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता। बाबा इतना प्यार देते हैं, लेकिन बाबा का प्यार मुझे महसूस नहीं होता है। ऐसा है कोई जो बाबा का प्यार जिसको महसूस नहीं होता हो? बाबा इतने अच्छे अच्छे टाइटल्स दे रहे हैं, उसको महसूस हम नहीं कर पा रहे हैं। बाबा अगर कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, लेकिन अब जब हम अपने जीवन को देखते हैं कि मैं कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, तो अभी तक ये संस्कार मेरे पास है, अभी तक ये नेगेटिविटी मेरे पास है, तो मैं कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कहाँ मैं बाबा के दिल तक नशीन हूँ। कभी कभी ऐसा होता होगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपने संपूर्ण स्थिति को देखना है। परम धाम में हम जब थे कैसे थे, कैसे थे परम धाम में, अपनी स्थिति कैसी थी? परफेक्ट, कोई भी कमी कमजोरियां नहीं थी ना आत्मा के अंदर, है ना। उस स्वरूप को हमें मर्ज करना है, भले अभी वर्तमान से अभी इस क्षण में आप अगर अपने आप को देखते हैं बहुत सारी कमी कमजोरियां नजर आती होगी, है ना। केवल लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आपने कहा केवल कमी कम, ठीक है वो तो देखना है, लेकिन केवल कमी कमजोरियों को देखते हैं तो उदास हो जाते हैं ना। अपने विशेषताओं को भी देखने की जरूरत है। जब दोनों को देखते हैं, बाबा के जो टाइटल्स मिलते हैं उसको चित्त से हमें स्वीकार करना है। बाबा भी कह रहे हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये वरदान दिया हुआ है, तो उसको मैं स्वीकार कर लूं कि सचमुच मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हूं, मैं बाबा के नूरे रतन हूं। तो बाबा ने इतने सारे जो टाइटल्स दिया है, मैं उसको दिल से स्वीकार कर लूं कि हाँ सचमुच मैं आत्मा ऐसी हूं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर धीरे 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 कमी कमजोरियां भाग जाती है, है ना। तो वो अनुभव हमें करना है। कोई भी आगे अगर कमी कमजोरियां अपने कमी अगर याद आई तो उसको ठीक है, समझ के हिसाब से हमें समझ है, लेकिन फिर उसके जगह पर हमें शक्तियों को भरने की जरूरत है, गुणों को भरने की जरूरत है। उसके बारे में मनन चिंतन करते जाएंगे तो वो गुण हमारा हो जाता है, फिर वहां अवगुण नहीं रहेगा, है ना। तो वो हम अभ्यास यहां से करते करने की कोशिश करें कि अपने अंदर सब गुणों को, शक्तियों को हम भरते जाएं, ताकि फिर कोई भी कमी रहने का नौबत ना आए, कोई भी जगह ना रहे अपने अंदर कमी कमजोरियों के लिए, और मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्व गुणों से संपन्न होने का लक्ष्य हम यहाँ शुरुआत करें, उसका शुभ शुरुआत यहाँ करके जाएं, तो ताकि फिर ना केवल अपने अंदर, फिर हर एक को हम फरिश्ते रूप में देखें। क्योंकि अगर कहीं बार अपने अंदर नहीं दिखाई देता है कमी कमजोरियां, लेकिन दूसरों में ज्यादा दिखाई देता है, ऐसा है ना। तो ये ज्यादा संस्कार ये है कि बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि अपना नजदीक का जो चश्मा ये है ना, नजर वो कमजोर हो गया है, दूर का नजर थोड़ा शक्तिशाली हो गया है, माना दूसरों के अंदर कमी देखने के जो संस्कार है वो भी हम यहाँ खत्म करें। 3 दिन ये हम अभ्यास करें, अपने को देखें और बाबा को देखें और बाबा के संग का अनुभव करें हम, है ना। भले हम संगठन में हैं, संगठन में रह रहे हैं, संगठन में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव क्या करना है, अनुभव क्या करना है, मैं और बाबा और दूसरा कोई नहीं, है ना। जब घर में होते हैं तो बहुत सारे कारोबार होते हैं, नौकरी करने जाना है, घर में खाना पकाना है, या फिर बहुत सारे कारोबार होते हैं, जवाबदारियां होती है। यहाँ 3-4 दिनों के लिए कोई भी जिम्मेवारियां नहीं है, है ना। बाबा के घर में बना बनाया भोजन मिल रहा है, अच्छी तरह सब कुछ सुविधा मिल रहा है, तो आपको केवल क्या करना है, स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में क्या करते थे, कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, हम क्या करते थे, कोई चिंता नहीं है, बना बनाया भोजन मिलता था, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, बस यही बुद्धि में होती थी। ऐसा आपको चार दिन केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ पुनः आपके आया है, तो इसलिए उसका पूरा लाभ उठा करके हम उसका पूरा पूरा हम अपने अंदर वो शक्तियां वो गुण अपने अंदर भरे। और उसके लिए दूसरी बात जो बहुत ही जरूरी है वो है मौन, है ना। मौन अगर हो रखते हैं तो ज्यादा हम अनुभव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा शक्तियों का नष्ट कहाँ होता है, ड्रेन आउट होता है बातों में, है ना, बोल में। तो जितना हम बोल कम करें, इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो, है ना। तो इसीलिए अभी यहाँ आज रात को तक जितना भी आपको बोलना है ठीक है, फिर उसके बाद कल सवेरे से आपको आप ये लक्ष्य रखें पूरी तरह मौन रहते हुए हम अभ्यास करें और पुरुषार्थ करें, ये साधना करें, ताकि फिर हम वो अनुभव गहरा अनुभव करके यहाँ से जाएं। और मौन भी 3M का मौन चाहिए, 3 प्रकार का मौन चाहिए और 3M का मौन चाहिए। सबसे पहले जो मौन, पहला मौन है वो है मुख का मौन, एम पहला एम वो है मुख का मौन। बोलना जैसे कम बोलना धीरे बोलना तो बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ जो आवश्यकता है उतना जरूर बोलिए, लेकिन फिर जितना आवश्यक है उतना ही बोले, है ना, और जितना आवश्यक नहीं है अनावश्यक नहीं बोलना है। आपको कई बार होता है ना कि हाँ इतने सालों के बाद मधुबन आए हैं, इतना संगठन है, सबसे बातें करे, सबसे मिले जुले, हाँ ठीक है, बाबा का परिवार है, खुशी है, सबसे मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन जितना मिनिमम रखे, हाँ बड़ों से मिलना है, निवासियों से मिलना है, हाँ हेलो करना है, ओम शांति करनी है, ठीक है, लेकिन उसी में उलझे नहीं रहना है, है ना। तो जितना कम हो सकता है व्यक्तियों से मिलना, आत्माओं से मिलना, जितना हम कम करें ये 3 दिन उतना अच्छा रहेगा, जितना मुख का मौन हम रखते, क्योंकि मौन एक साधना है, और साधना में अगर हम गहराई के अनुभव हम करना चाहते हैं तो फिर मुख का मौन रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है मन का मौन। कई बार हम सोचते हैं एक हफ्ते का मौन रखे, 21 दिन का मौन रखे, रख तो लेते हैं मुख का मौन, लेकिन मन का मौन नहीं रख पाते हैं, इसलिए बहुत बेचैनी होती है, बहुत जैसे घुटन सा महसूस होने लगता है, बहुत जैसे बंधे हुए ऐसा लगता है। तो इसीलिए दूसरे प्रकार का जो मौन है वो बहुत ही आवश्यक है, मन का मौन, क्योंकि अभी तक मन भटक रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, अपने सगे संबंधियों में या अनावश्यक इधर उधर भाग रहा है, तो इसीलिए हम वो गहन अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बार 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 मन को वापस अपने ट्रैक में लाने की जरूरत है। भले आपको यह क्लास, आप क्लास में बैठे होंगे लेकिन फिर बुद्धि कहीं बाहर अगर भटक रहा है तो मन पर कंट्रोल कहाँ है, है ना। इतने अच्छे अच्छे क्लासेस मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स मिल रहे हैं, स्थूल रूप से शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ है, चेक करने की जरूरत है, है ना। तो तन से भी उपस्थित है लेकिन मन से भी हम उपस्थित जरूर रहे। तन से तो मधुबन में पहुंच गए लेकिन मन से भी पहुंचे हैं, मन से भी पूरी तरह यहां मधुबन में बाबा के साथ रह करके मन का मौन, कोई भी और विचार नहीं, कोई भी और जवाबदारियों के बारे में भी सोच नहीं, कोई भी प्रकार की सोच नहीं, केवल बाबा, बाबा का ज्ञान और उसको कैसे मैं धारण करूं, उसके बारे में मनन चिंतन करते रहे और मन का मौन जरूर रखे। और तीसरे प्रकार का मौन बहुत ही मुश्किल है। तीसरा यम कौन सा है? मोबाइल। मोबाइल का मौन हो सकता है? हो सकता है। मुख का मौन तो रख ही लेते हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल को भी बंद होगा, स्विच ऑफ कर सकते हैं आज रात को सोने से पहले? जिनको भी आपको मैसेज भेजना है, बोलना है कि हाँ आराम से पहुंच गए हैं, जो भी बचा हुआ कारोबार है वो आज रात को पूरी करें, है ना? सोने से पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है? हो सकता है। हाँ, तो जितना हम अपने ऊपर कंट्रोल रखे उतना हमारे लिए अच्छा है। कल बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर बात बाबा ने कही थी। बाबा ने कहा था कि बालकपन और मालिकपन का बैलेंस हमें कर रखना है। मालिकपन किस में? अपने को कंट्रोल करने में, अपने संस्कारों पर विजय पाने में, अपने पुरुषार्थ में, उसमें मालिकपन। और बालकपन संबंध संपर्क में जब आते हैं, सेवाओं में जब आते हैं, तो बाहर दूसरों के साथ जब व्यवहार में आते हैं वहां बालकपन, लेकिन अपने संस्कारों पर विजय पाने में मालिकपन, अपने पुरुषार्थ में मालिकपन। अभी आपको मालिक बन करके क्या करना है? अभी मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। और भले आप जब सोचते ठीक है मैं तो स्विच ऑफ कर लेंगे, लेकिन फिर कल देखते हैं बाहर जाकर के निवासी फोन पे बात कर रहे हैं, सेवादारी बातें कर रहे हैं, उनका तो कारोबार है, वो तो भट्टी में नहीं है, आप भट्टी में हैं, वो लोग भले कर रहे हैं क्योंकि उनका कारोबार है, है ना? उनको देख करके फिर लगे कि वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, इसमें फिर माया के वश में नहीं आना। ये तो प्रलोभन होगा कि ये कर रहे तो मैं भी कर लूं, थोड़ा एक मैसेज भेज दूं, ये एक बात कर लूं, ये थोड़ा सा रॉयल रूप से माया तो आएगी, लेकिन फिर हम मालिक बन करके जो हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है उस अनुसार हम करें, अपने ऊपर कंप्लीट पूरी तरह नियंत्रण पाकर के, राज ऋषि बन करके, राज योगी बन करके हम पूरी तरह ये तीन दिन हम उसका आनंद जरूर लेंगे, है ना? ऐसी बात है ना? तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम सभी हम मिलते रहेंगे तीन दिन। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को पुनः बाबा के घर में, आपके ही घर में, ज्ञान सरोवर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शांत।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी। हाँ, एक बार अच्छे से ताली बजा लें, क्योंकि ताली केवल आपको, तालियों की गड़गड़ाहट इस हॉल में केवल आज होगी, कल से फिर आपको पूरी तरह मौन रहना है और एक हाथ की ताली को यूज करना है, ठीक है ना? तो एक चैलेंज दिया है हमारी आदरणीय सुमन बहन जी ने, 3M का मौन। तो किस किस ने एक्सेप्ट किया है इस चैलेंज को, जरा हाथ उठाएं। वाह, जिन्होंने नहीं उठाया वो हाथ उठाएं। दो है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, आप पर्सनली जरूर ऑनेस्टली उठा रहे हैं। ये अच्छा। लेकिन फिर भी जैसा बहन जी ने प्रेरणा दी है, हम आए ही इसी लक्ष्य से हैं। और देखें ना, बाबा कहते हैं तुम निराधार बनो, कोई आधार नहीं। तो मोबाइल भी अब एक आधार बन गया है हमारा, यदि वो मोबाइल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सोचें। तो पहले भी तो नहीं था ना, हमारे पास सारे कारोबार चलते थे, इसीलिए आज उसे अपनी तरफ से सारे कारोबार जैसा इन्होंने कहा करके 3 दिन एक चैलेंज के रूप में लें। दुनिया में तो अलग अलग चैलेंजेस देते हैं ना, कि चलो बहुत ठंडी है तुम बहुत ठंडे ठंडे पानी में नहा के दिखाओ, हा? तो ऐसा चैलेंज देते हैं। अब वो तो उटपुटांग सा चैलेंज देते हैं, ये जो चैलेंज है ये आपके कल्याण के लिए चैलेंज है, आपकी उन्नति के लिए है। तो मौन मुख का भी रखें, मन का भी और मोबाइल का भी, ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण सी बात। इसके अलावा सुंदर लक्ष्य हमें मिला कि हमें क्या करना है इस भट्टी में, अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा, अपने अंदर जाने का एक ही तो वक्त मिलता है हमें, बाकी समय हम अपने कारोबार में रहते हैं, तो क्यों ना इसका पूरा पूरा हम सदुपयोग कर लें, अपने अंदर जाएं, अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा करते हुए बाबा के अंग संग का सुंदर अनुभव करें। वो अनुभूतियां जो अब तक हमने नहीं की हैं, हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि बाबा से हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुआ, हम औरों से भी सुनते हैं, तो हम कब करेंगे। तो अभी बाबा हमारे साथ साथ अगले 3 दिनों तक हैं, बड़ों का सुंदर प्यार, उनका आशीष, उनका गाइडेंस हमारे साथ है। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने आप को भरना चाहते हैं, हम कितना अपने आप को अनुभवी मूर्त बनाना चाहते हैं। तो हमारे बड़े हमें जो इतना वक्त दे रहे हैं, इतनी व्यवस्था आपको दे रहे हैं कि आप करो आप करो आप करो, तो क्या करेंगे क्या करेंगे करेंगे ना, कौन कौन करेगा, फिर से एक बार हाथ उठाएं। वाह, बहुत सुंदर। हम सबके लिए एक सुंदर सी यही बात कि हम इसे अपने जीवन में अख्तियार करते हुए चलें, जिस लक्ष्य से आए हैं उसे हम जरूर पूर्ण करें। और एक बात, आप डायरी पेन लेकर के जरूर बैठें हर एक क्लास में, अभी भी जो सुंदर प्रेरणाएं मिल रही हैं। और साथ ही मास्क आप सबको लगा के रखना है, इस बात का ध्यान रखें। मुझे बोलना है इसलिए मैंने नहीं लगाया है, तो आप मुझे फॉलो ना करें, लेकिन आप मास्क हमेशा ही क्लास में कैंपस में लगा करके रखें। जिनके पास नहीं है वो सेवादारी ऑफिस से या डिस्पेंसरी से ले सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्टेंस भी जरूर बना करके रखें। आप सब जानकारी आपको है ही कि फिर से कुछ चीजें हो रही हैं, तो क्यों ना यहाँ हम भी सेफ रहें और औरों को भी जरूर सेफ रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं शुभकामनाओं की ओर। हमारी आदरणीय पार्वती बहन जी, आप सबको बहुत ही प्यार से, बहुत ही शुभ भावना से यहाँ लेकर के आई। माँ का कर्तव्य ही होता है बच्चों की अच्छी खातिरी करना, उनकी पालना करना, उन्हें योग्य बनाना। तो उनकी जो आप सबके प्रति शुभ आश है, शुभकामना है, वो अब हम आदरणीय पार्वती बहन जी से सुनेंगे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, आप सब अच्छी तरह अवगत हैं, जो हर पल आप सबकी सेवा में उपस्थित हैं, आप सबको बाप समान देखना चाहती हैं। तो अगले 3 दिनों में भी आपकी जो विशेष शुभकामनाएं हैं या प्रेरणाएं हैं वो लेंगे। हमारे बीच आदरणीय सूर्य भाई जी भी आ गए हैं जोरदार करतल ध्वनि से, हम आदरणीय भ्राता जी का। आइए, मंच में आपका स्थान रिक्त है, आप उसे पूर्ण करें। और आपके आने से ही सबके चेहरे में मुस्कान आ गई है। एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय भ्राता जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा पार्वती बहन जी से अपनी शुभकामनाएं हम सबके सम्मुख रखें।
ओम शांति। आज के सांधिकालीन सुंदर वेला में भट्टी का शुभारंभ और हमारे बीच आदरणीय परम श्रद्धे वरिष्ठ भ्राता जी सूरज भाई जी, से आप सब रोजाना टीवी पर मोबाइल पर सुनते ही रहते हैं, देखते रहते हैं और आज आपके सम्मुख हैं ऐसे आदरणीय भाई साहब, हमारी आदरणीय सुमन बहन जी जो भी शेष भट्टी का कुशल संचालन कर रहे हैं, और आप
लगातार ही अथक होकर सेवाएं दे रहे हैं। रूपेश भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो और अच्छे तरह से संचालन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे संजय भाई जी, ये ज्ञान सरोवर परिसर हम सब के लिए बहुत सेवाएं दे रहा है, और सभी सेवाधारी भाई बहने हम सब के लिए सारी व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। तो बहुत समय से उमंग था एक भट्टी का कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में रहे, तो हमको पहले डेट अप्रैल मास की मिली थी, अप्रैल में आना था बरेली क्षेत्र के भाई बहनों को, परंतु कोविड के कारण से वो डेट कैंसिल हुई और पुनः ये दिसंबर की डेट मिली है। तो सबको उत्सुकता भी थी, और जब से लोगों को बताया तो सबको ये बहुत अंदर इच्छा थी कि हम वहाँ पहुँचें और ज्ञान सरोवर में रह करके हम उसका अनुभव करें, प्राकृतिक का भी अनुभव हो और वहाँ का जो सुंदर वातावरण है उससे हमारे जीवन में और दिव्यता आए। तो आज के कार्यक्रम में हमारी आदरणीय सुमन दीदी ने बहुत अच्छी तरह प्रेरणाएं दी हैं, और मैं तो ये अनुभव कर रही हूँ कि जैसे 3 दिन के लिए हमको होमवर्क भी दे दिया है, चेकिंग और चेंज का भी समय और हमें पॉइंट दे दी है, और हम इन 3-4 दिन के लिए जो यहाँ पहुँचे हैं, मेरी भी शुभकामना है ये बात की कि आप जो यहाँ अपना समय निकाल के कीमती आए हैं अपने घर परिवार से कारोबार से, तो यह ऐसे ही व्यर्थ ना जाए और हम इसको विशेष एक ऐसा कुछ चिन्ह बना के लेके जाएं कि हमारे जीवन का एक आदर्श बन जाए और हमेशा हमेशा के लिए हम एक कवच की तरह से रखें कि इस भट्टी में हमने अपने जीवन को एक सुंदर दिशा कैसे दी, जीवन को कैसे गोल्डन एज में जाने तक अपने आप को बनाने का कौन सा विशेष पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, और वो जीवन में जो छाप है इस भट्टी की हमेशा हमेशा के लिए ऐसी लग जाए कि हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाए। जो जैसे कि बहन जी ने कहा कि कोई भी ऐसी कमी कमजोरी है तो सोचते ही नहीं रहना, पर चेक करके चेंज करना है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सब इतने उत्सुकता से आए हैं और उत्सुकता से कारण से ही आप बहुत अच्छे से भट्टी को अटेंड करेंगे विधिवत, जैसा भी यहाँ का विधि है व्यवस्था है। आप टाइमली पंचुअलिटी भी हो और रेगुलरिटी भी हमारे जीवन में हो, जिससे कि पूरी भट्टी का पूरी तरह लाभ लें, अपने जीवन को संपन्न बनाएं, क्योंकि समय समीप है, वो समीपता से अपने को बाप के समीप अनुभव करना है। ऐसी मेरी शुभकामना आप सबके प्रति है, और आप सब पूरा सहयोग देंगे इस बात के लिए कि हम जिस पर्पज से आए हैं, यहाँ पर 3 दिन कोई काम नहीं, 3 दिन जो पर्पज है हमारा, हम उस पर्पज को हल करेंगे और पूरे टाइम अपने मन बुद्धि को बाबा में, भट्टी में, क्लासेज में, बाबा के साथ के अनुभव, चलते फिरते हर घड़ी हर समय मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं, ऐसी मैं शुभकामना रखती हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया पार्वती बहन जी आपका, आपकी शुभकामनाएं सबके लिए बल का काम करेंगी, और सभी निश्चित रूप से अपने आप को बलवान बनाकर इस भट्टी से जाएंगे। आइए अब विधिवत इस भट्टी का सुंदर आगाज करते हैं दीप प्रज्वलन से। जैसे रोशनी होती है दीपक से, ऐसे स्वयं में हम ज्ञान प्रकाश भरें, इस सुंदर दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस भट्टी का आगाज करें। तो अनुरोध करूंगा मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ जनों से और सामने बैठी टीचर्स बहनों से कि वो मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलन के सुंदर विधि में शरीक होंगे। और हम सब भी आज अपना मोबाइल यूज कर लें, मोबाइल का टॉर्च जलाकर आप भी इस दीप प्रज्वलन में अपने स्थान पर खड़े होकर शामिल होंगे। तो चलिए दीपराज बाबा उनका आह्वान करते हुए कि प्यारे बाबा, जब भी दीप जलाते हैं आपकी स्मृति में जलाते हैं और आप हमें स्मृति दिलाते हैं आत्मस्मृति का, तो दीपराज बाबा की स्मृति में उनका आह्वान करते हुए अपने आत्मदीप को भी सतत जलाए रखने का सुंदर संकल्प करते हुए इस भट्टी में हमें सब कुछ प्राप्त करना है सुंदर संकल्प को लेकर आइए सुंदर आगाज करते हैं दीप प्रज्वलन के माध्यम से। सभी अपना मोबाइल निकाल कर उसका टॉर्च जला लेंगे और हाथ ऊपर कर लेंगे तो एक सुंदर सा दृश्य हम सबके बीच होगा। तो हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं भट्टी का दीप प्रज्वलन के माध्यम से।
ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। अंबर से धरती पर जैसे प्रभु ने कर उतारा है, प्रभु ने कर हमारा है। अंबर से धरती पर जैसे प्रभु ने कर उतारा है, प्रभु ने कर उतारा है। ज्ञान सरोवर प्यारा है, हमारा है, हमारा है।
सुंदर दीप प्रज्वलन इस संकल्प के साथ कि आत्मदीप सदा जलते रहें, जगमगाते रहें, हम बाबा को और बाबा हमें याद आते रहें जब तक जीवन है। यही दुआ है आप सबके लिए कि हम यूं हैं, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश सारे संसार में फैलाते रहें। तो सुंदर दीप प्रज्वलन के माध्यम से हमने भट्टी का आगाज किया। अब इस भट्टी में और गहराई में चलते हुए हम सब जानते हैं दीप थोड़ा प्रकाश देता है, लेकिन जब ज्ञान सूर्य इस धरा पर उदित होते हैं तो पूरा जग ही प्रकाशित होने लगता है उनके प्रकाश और शक्तियों से। ज्ञान सूर्य को फॉलो करते हुए मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे जग में बाबा के ज्ञान को फैलाते हुए आदरणीय सूर्य भाई जी हम सबके लिए बहुत प्रेरक, बहुत आदर्श हैं। प्रतिदिन हम सबके घर में भ्राता जी पहुंचकर हमें जागृत करते रहते हैं। किस किस के घर में पहुंचते हैं भ्राता जी रोज? जरा हाथ उठे भाई साहब, आप रोज जाते हैं सबके घर इसलिए ऐसा लगता ही नहीं है कि हम भाई साहब को आज आज देख रहे हैं, हम बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, रोज ही देखते हैं। तो ऐसे हम सबको प्रेरित करने वाले, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले, हम में बल भरने वाले, हमें ज्ञान योग की गहराई में ले चलने वाले आदरणीय भ्राता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगले जो 3-4 दिन हैं कैसे हमारे जीवन के लिए यादगार बन जाएं, ऐसे बन जाएं जो हम बिल्कुल जो कहें सदियों से चाहना थी या इस ब्राह्मण जीवन में जन्म से चाहना थी वो इन 3-4 दिनों में हमारी पूर्ण हो जाए। हम क्या करें उस पर आदरणीय भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। तो भ्राता जी की प्रेरणाएं हम सबके सम्मुख एक बार पुनः जोरदार तालियों से भ्राता जी का हम स्वागत अभिनंदन करते
हैं। ये जीवन बहुत सुंदर है, ईश्वरीय जीवन, अनमोल, और इसको बहुमूल्य वो बना लेते हैं जो स्वचिंतन करके अपने टीचर स्वयं बनकर अपने को अनेक बातों से मुक्त करके लाइट हाउस बन जाते हैं संसार के लिए। जैसे आप सुन रहे थे, दीपक की रोशनी तो थोड़ी दूर फैलती है लेकिन हम सभी लाइट हाउस, लाइट हाउस की भी संसार में नहीं फैलती लेकिन हमारा दिव्य प्रकाश संसार को रोशन करता है। तो पहली बात मैं सबको याद दिलाऊंगा, इस भट्टी में सभी स्वचिंतन बहुत करेंगे और स्वचिंतन को अपनी नेचर बनाएंगे। स्वचिंतन माना अपने से बात करना, स्वयं को स्वयं उमंग उत्साह दिलाना, मोटिवेट करना, बाबा का महावाक्य याद कर लें अभी का। हे मुक्ति दाता के मास्टर, मुक्ति दाता बच्चे, बोलो आगे क्या कहा। स्वयं को मुक्त करो, चैलेंजिंग भाषा है ये। वो देखता है कि जिनको संसार को मुक्त करना है वो बंधे हुए हैं, उन्होंने अपने को मुक्त नहीं किया है। तो इस भट्टी में गहन चिंतन करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मनुष्य स्वयं पकड़े रखता है, उलझा रहता है। कुछ वास्तव में बड़े बंधन होते हैं, पर कुछ बंधन अपने बनाए हुए होते हैं। मुझे एक सीन याद रहता है बाबा का, बहुत बहुत पहले का, जो ध्यान में बाबा ने किसी को दिखाया भोग लगाते समय, कि पक्षी पेड़ की डाली पर बैठे हैं, पंजों से डाली पकड़ी हुई है, उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं। बाबा ने दिखाया, देखो बच्ची, देख लिया ना क्यों नहीं उड़ पा रहे है? डाली तो मजबूती से पकड़ी हुई है, पंख फड़फड़ाने से क्या होगा। बस इतना ही मैसेज था, डाली छोड़ो। हम सब ने भी जो डालियां पकड़ी हुई हैं, डालियों ने हमें नहीं पकड़ा हुआ है, हमने डालियों को पकड़ लिया है। सच है या नहीं देख लेना, अपने से बात करना। आत्मदर्शन का, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं को देखने का ये सुंदर अवसर सभी को मिला है। कभी कभी मनुष्य ऐसा सोच लेता, हम तो ठीक चल रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। जो बाबा ने कहा, रॉयल अलबेलापन और रॉयल आलस भी रहता है, तो मुझे स्वयं को किस किस चीज से मुक्त करना है। बिल्कुल अपने को देखेंगे कुछ क्षण बाद में, अभी नहीं, आंख बंद करके बैठ जाना और विचार करना, स्वयं भगवान, भाग्य विधाता, वरदाता, हमें सब कुछ देने आया है। ऐसा तो नहीं हमने अपने को ब्लॉक कर लिया, ऊपर से आ ही नहीं रहा, वो बरसात कर रहा है और हमने पावरफुल कवच बना लिया है, बरसात में भीगे ही नहीं, पावरफुल रेनकोट पहन लिया है, उसकी बरसात आ ही नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। वो बहुत कुछ दे रहा है, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे किस किस चीज से मुझे मुक्त होना है, और आप देखेंगे बहुत चीजों से आप यही मुक्त हो जाएंगे। केवल मनुष्य को अवेयरनेस चाहिए, जागृति चाहिए कि हमें इससे क्या लेना। मान लो कोई व्यक्ति पर चिंतन कर रहा है, आपको यहां सोचना है पर चिंतन से मुझे मिलने वाला क्या है। गलती वो कर रहे और पर चिंतन हम। दादी जानकी की बचपन की बताई हुई बात मुझे बहुत लाभप्रद हुई। वो कहती थी, गलती दूसरी हो, दूसरे करें और मुसीबत हमारी, अवगुण दूसरों का और परेशान हम। बहुत बड़ी गलती और छोटी गलती, दूसरों को देख देख कर कई लोग पीछे हटते हैं, अपना रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं है। जिसको देखना चाहते थे युगों से, उसको देख लिया ना, देख रहे हैं। जिसे सुनना चाहते थे उसको रोज सुन रहे हैं, मुख से उसके ही वचन सुना रहे हैं। अब इसमें रहना है। संसार को देखकर क्या करेंगे, कलयुग का अंत है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं। जैसे बाबा कहते थे ना, कोई बाबा कहते थे, बाबा आप तो सबके दिलों को जानते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे दिलों को जानकर क्या करूंगा, गंदगी भरी पड़ी है, मुझे बदबू आने लगेगी, मैं नहीं देखता किसी को, तुम्हारा तुम जानो। हम भी क्यों देखें, चिंतन करना यहां। कोई परिवार की बाधा, किसी व्यक्ति का बंधन तो हमें बांध नहीं रहा है। बहुत अच्छी तरह। अभी देख लो, कहीं कोई एक ही मनुष्य हमें पूरे कल्प का भाग्य बनाने से रोक तो नहीं रहा है? आपके घर में आपका एक बच्चा आपको कुछ नहीं करने दे रहा है, आपकी बुद्धि उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है, किसी की पत्नी उसके लिए बाधा बन गई है, किसी का पति उसके लिए मार्ग अवरुद्ध करने वाला हो गया है। छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से, अपने पावरफुल संकल्पों से, अपने योग बल से। जब हम विश्व को बदल सकते हैं तो क्या अपनों को नहीं बदल सकते? सोच लेना। विश्व को बदल सकते हैं, अपनों को बदल सकते हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है बहुत कुछ करने की, बस बात यही है कि हम अपने को संभालना सीख जाएं। मनुष्य क्या है, दूसरों को संभालने के लिए परेशान और चिंतित है। और सत्य यह है कि यदि हम अपने को संभाल लें तो दूसरे स्वयं ही संभल जाएंगे। ठीक बात है या नहीं भाई, बताओ। बच्चे आपके दो हैं, आपके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, बुरे संग में जा रहे हैं, वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, आपका चिंतित होना स्वाभाविक है, कोई मनुष्य चिंतित होगा। लेकिन ये गुह्य रहस्य सभी समझ लें, स्वयं को संभालना सीख लिया। स्वयं को संभालना अर्थात स्वयं की स्थिति को संभालना, सब स्वतः ही संभल जाएगा। मुझे याद है एक बार पांडव भवन में एक राज्य की असेंबली के स्पीकर आए थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो भाषण करते हुए कह रहे थे, देखो एक संसारिक व्यक्ति पॉलिटिशियन भी कितनी सुंदर बात अपने पास रखते हैं और बाबा के बच्चे भूल जाते हैं। वो कह रहे थे, लोग मुझे कहते हैं, जो उनकी भाषा थी वही यूज कर रहा हूं, कह रहे ये MLA तो गधे होते हैं, दुलत्ती मारते हैं, दोनों लात मारते हैं, तुम इन्हें कैसे संभालते हो, 350 मेंबर हैं वहां, MLA हैं। कहा मैं तो उत्तर देता हूं, मैं किसी को नहीं संभालता, मैं तो अपने को संभालता हूं। बहुत पहले की बात, मैंने भी सीखा, कितनी सुंदर बात एक पॉलिटिशियन कह रहा है, जो बात ज्ञानियों की है, जो रूहानियत के मार्ग पे चलने वालों की है, वो इस व्यक्ति ने भी अपनाई हुई है। तो हमने देखा वो डिस्टर्ब होते ही नहीं, सबको शांति से बैठा देते, उनके प्रश्नों का उत्तर दिला देते, शांत कर देते हैं, खुद क्रोध में नहीं आते, खुद इमोशनल नहीं होते। सभी ये कला सीख लेंगे। परिवारों में जो कुछ आपके है बहुत कुछ है, सबके परिवार में बहुत कुछ हो रहा है। कलयुग का अंत है और इसमें अनेक आत्माएं हिसाब किताब पूर्ण कराने, करने, लेने देने आ गई हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हो रहा है। अब कर्मों का हिसाब किताब हमें योग बल से, सुभावनाओं से, अच्छे बोल से पूर्ण करना होता है, हमें पूर्ण करना है। समस्याएं बढ़ रही हैं संसार में, तो इस भट्टी में सभी कुछ अपना सुंदर प्लान भी बना लेंगे जीवन भर का। जैसे बहन जी कह रही थी, ये भट्टी सदा के लिए भट्टी हो जाए। मैं इसमें और जोड़ देता हूं, ये भट्टी हमारे अगले कल्प को सुधारने वाली हो जाए। एक सुंदर चिंतन कर लेना, बहुत गहरी चिंतन है ये, मैं अपने जीवन को अगले 10 सालों में कैसा देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं। और भी इससे बढ़कर बात, अगले 10 साल इस विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा रोल इस सृष्टि पर चलने जा रहा है जिसकी चर्चा साकार मुरलीओम बाबा ने बहुत की है। आप सब सुनते हैं, वो साक्षात्कार होंगे, धूम मचेगी जैसे शुरू में धूम मची थी। तो चिंतन कर लेना, ऐसे समय में मैं क्या पाठ बजाना चाहूंगी, साक्षात्कार करने वाले या कराने वाले, लेने वाले या देने वाले। बाबा का सारा काम हमें कर लेना होगा, जैसे उसने हमें दिया है, जैसे उसने हमारी पालना की है, हमें भी संसार को देना होगा और संसार की पालना करनी होगी। तो मैं क्या पाठ बजाना चाहता हूँ, बजाना चाहती हूँ, सोच लेना इस भट्टी में। और ज्यादा सोचने की इच्छा हो, एक बात और कहना चाहता हूँ, वो थोड़ी बहुत बड़ी है। हम अपने हर जन्म को, हर जन्म के जीवन को कैसा देखना चाहते हैं, एक विजन बना लेना। सवेरे उठ के कुछ दिन चित्र बनाना, मेरा हर जन्म ऐसा हो जिसमें सिर पर ताज हो, मेरा हर जन्म ऐसा हो जिसमें परिवार में संबंधों में बहुत प्यार हो, मेरा हर जन्म ऐसा हो धन धान भरपूर हो, इतना भरपूर हो कि देते ही चले। हमारे भारत में दो राजा ऐसे हुए, सम्राट हुए, वो भी अच्छे बड़े, बहुत लोग उनको इस तरह नहीं जानते। भारत का बहुत प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन, उज्जैन में थे ये सब, उज्जैन राजधानी होती थी इस सारे क्षेत्र की, अब का क्षेत्र नहीं, गुजरात सारा और राजस्थान का भी हिस्सा और मध्य प्रदेश और उसके इधर उधर सब ये उज्जैन राज्य के अंदर आता था। तो हर्षवर्धन 13वीं सदी में, हर 5 साल के बाद वो अपने सारे खजाने को दान कर देता था। राजा सम्राट था वो भारत का प्रसिद्ध, सारा खजाना खाली बैठ जाता था, कई दिन चलता था, जो भी आ रहा ले जाओ। उसके शरीर पे जो होते थे ना, यहाँ शरीर पे राजाओं के होते हैं ना, बहुत हीरे सोना सब दे देता था। ऐसे महादानी भारत में हुए राजा भोज, उसने जहां तहां भोजनालय खुलवा दिए थे, अपने से कईयों को बताओ, अखंड भोजन चलता था, जिसको खाना हो खाओ। मैं जालौर में गया, यही राजस्थान में जालौर है, सिरोही के अगला डिस्ट्रिक्ट, इधर को भोज की भोज भोजशाला। मैंने कहा यहां कैसे बन गई है, कहा ये तब की काल की दिखाते हैं इतिहास में कि यहाँ अखंड भंडार चलता था, लंगर कहते हैं उसे, आप जानते हैं हिंदी वाले। राजा भोज की एक कहानी सुना देता हूँ, आपको काम आएगी बहुत जीवन में। वो भी बहुत दानी थे, उन्होंने सोचा अपना सारा खजाना दान कर देता हूँ। लगा दिया दान का लंगर, एक जगह निश्चित हो गई, यहां बैठकर राजा सारा दान करेंगे। दान चलने लगा, अब उसका मंत्री ने देखा कि राजा तो सारा दान कर देगा, उसने सामने की दीवार पर लिखा दिया, मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को इमरजेंसी पीरियड के लिए भी कुछ बचा कर रख लेना चाहिए। बहुत समझ गया मंत्री ने लिखाया है, बुद्धिमान था मंत्री बहुत, उसने उसके नीचे लिखा दिया, भाग्यवान आत्माओं के, भाग्यवान मनुष्यों के पास इमरजेंसी पीरियड आता ही नहीं, दान चलता रहा। अभी मंत्री परेशान, आगे और सुंदर बात है, मंत्री परेशान, एक दो दिन में उसने फिर लिखा दिया कि चलो इमरजेंसी पीरियड नहीं आता, भाग्यवान होते हैं, पर कभी भाग्य साथ न दे, ऐसे समय के लिए भी कुछ बचाकर अवश्य रख लेना चाहिए। राजा ने आते ही पढ़ लिया, भोज ने उसके नीचे लिखा दिया, जब भाग्य साथ नहीं देगा तो धन कहां से साथ देगा, अब मंत्री सिर पकड़ के बैठ गया बेचारा, भोज बहुत बुद्धिमान थे, बड़े गुणवान थे, कहा चलने दो, और जो देता है बोलो आगे उसके भंडारे भरपूर रहते हैं। उसने सब दे दिया तो जो साहूकार लोग थे उन्होंने बहुत कुछ राजा को गिफ्ट दे दी, आपने सब दे दिया है हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, फिर से भंडारा 6 मास में सारा खजाना फिर भर गया। हम सभी को भी देना होगा, देने का समय तेजी से आ रहा है, तो चिंतन करना मेरा हर जन्म ऐसा हो। जो भी मेरी इस बात को समझ रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करेंगे। सवेरे जब हम उठते हैं, अब 7 दिन करके देखना, सवेरे उठ के भूल जाए थोड़ा बाद में कर लेना, मेरा हर जन्म ऐसा होगा, निरोग काया, देने का हाथ सदा, लेने का कभी नहीं, सुख शांति प्रेम से भरा हुआ जीवन, धर्म के क्षेत्र में हम बड़ा काम करेंगे। भारत से बहुत प्यार है ना हम सबका, है या नहीं? बहुत प्यार है, कईयों के चित्त में समाया हुआ है। भारत को अलग अलग समय पर बहुत मदद करेंगे। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इतिहास, भारत में द्वापर युग में भी 3 विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ अधिकार किया, और भारत के कुछ बहादुर ऐसे थे जिन्होंने उनको देश से निकाल दिया, किन्हें 50 साल राज किया, किन्हें 30 साल किया, निकाल दिया उनको। ये सब हीरो एक्टर यही हैं ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि जो भगवान से प्यार करते हैं वो उनकी जन्मभूमि से भी बहुत प्यार करते। आप सबने भी इस महान देश के लिए अनेक बार कुर्बानियां की होंगी, यह भी विस्मृत हो गया है पर यही सत्य है। तो हमारा हर जन्म ऐसा हो, हम दूसरों के काम आ जाएं, हम देश के काम आ जाएं, हम परोपकार करते चलें, हम बेसहायों के सहारे बन जाएं हर जन्म में। एक विजन बनाना, विजन माना चित्र बनाना बुद्धि में, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। तो बहुत सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं, बाबा बहुत कुछ दे रहा है। बहन जी ने शब्द बोला बाबा का संपन्न बनना है, संपन्न और संपूर्ण इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाबा दोनों शब्द बोलते हैं हमेशा। संपन्न अर्थात सर्व खजानों में भरपूर, और संपूर्ण जब आत्मा की डिग्री बढ़ते बढ़ते 100 पर पहुंच गए योग बल से। सर्व खजानों में ज्ञान का खजाना, गुणों का, समय का, खुशी का, शक्तियों का, प्योरिटी का, स्वमान का, सब बाबा वर्णन करते हैं, पवित्रता का, पुण्य कर्मों का। तो सभी इन खजानों से स्वयं को भरपूर करें, जिसके पास जो खजाने होंगे उस अनुसार ही उसका भाग्य निर्माण होगा। ज्ञान खजाने से भरपूर, एक तो बुद्धि श्रेष्ठ मिल जाएगी, दूसरा धन संपदा बहुत रहेगी। मूल्यों में आता रहा व्यक्त में, जो ज्ञान धन दान करते हैं वो जन्म जन्म धनवान रहते हैं। यहाँ के लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, वर्तमान के लिए जिनके पास ज्ञान का खजाना बहुत है, भाई लोग ध्यान से सुन लेंगे, जिनके पास ज्ञान का खजाना बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। देख लो कहीं हमें ऐसा तो नहीं कर रहे कि स्थूल धन कमाने में ज्ञान खजाने को छोड़ते जा रहे हैं। कल कोई मुझसे मिलने आया, दुकान खोलते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं बिजनेस से, अमृत वेला होता नहीं, सोते देर तक है, मुरली भी होती नहीं। अब देख लो ये स्थिति, अब हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए भाई लोग बोलो, धन को या ज्ञान धन को? ज्ञान धन स्थूल धन को आकर्षित करेगा ही, अपने भाग्य को हम श्रेष्ठ बनाएंगे ज्ञान योग से, भाग्यवान आत्माओं को धन की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि धंधों के पीछे ज्ञान से थोड़ा दूर, टाइम नहीं है, मुरली तो सुन लेंगे, फोन पर भी आती है, क्या हुआ, वही वही तो कहता है बाबा, वही वही नहीं कहता, बहुत गहराई है साकार मुरलियों में। जो लोग कहते हैं वही वही बात रोज आती है, वो कुछ नहीं जानते, वही वही नहीं आता, बहुत गुह्यता है साकार मुरलियों में, डीप फिलोसोफी है। इसलिए ज्ञान खजाने को बढ़ाएंगे, यहाँ गुणों का खजाना भरेंगे, जन्म जन्म गुणवान रहेंगे। देखो गुणवान का जीवन कितना सुंदर होता है, जिसमें क्रोध है परिवारों में बिखराव है, जिसमें अभिमान है सब दूर हो जाते हैं, गुणों से भरपूर है बहुत प्यार रहेगा। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है, प्रभु प्रेम में जो मगन हो जाएंगे उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलता रहेगा। अब ये राज हैं, इन राज को पकड़कर अपने अगले कल्प को सुंदर बनाना है सबको। शक्तियां जिसके पास भरपूर होंगी उनके सिर पर ताज रहेगा, सत्ता मिलती रहेगी जन्म जन्म। दुआओं का खजाना जमा किया होगा, इसका अर्थ है दुआएं बहुत इकट्ठी कर ली, ऐसे कर्म किए हर व्यक्ति दुआएं दे रहा है, स्वयं भगवान भी दुआएं दे रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रेतन जी, हम सबको सुंदर प्रेरणाएं देने के लिए और सुंदर होमवर्क देने के लिए कि अब हम क्या करें, न केवल अभी लेकिन अपने हर जन्म में आने वाले अगले 10 सालों के लिए। तो स्वचिंतन, उसकी गहराई में उतरेंगे और खुद को मुक्त करेंगे, राइट। तो हम एक बार पुनः भ्राता जी का सुंदर प्रेरणाओं के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। भ्राता जी हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं, लेकिन शुभ समाचार ये रोज ही भ्राता जी अमृत वेले हमें पावरफुल योग कराएंगे, तो जोरदार ताली तो बजाएं। और साथ ही हमें सुंदर और ज्ञान रत्नों से सजाएंगे, क्लास लेंगे, तो भ्राता जी की उपस्थिति ज्ञान सरोवर में हमारे बीच रहेगी, तो उनके सुंदर वाइब्रेशन ज्ञान सरोवर के साथ साथ दीदी हमारी उपस्थित हैं, हमारी सभी बड़ी बहनें उपस्थित हैं, इन सब के भी योग के सुंदर वाइब्रेशन हमें योग युक्त करने में बहुत बहुत मदद करेंगे। भ्राता जी ने तो हमें प्रेरणाएं दी ही, मुझे आदरणीय दीदी की भी याद आ रही है, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी की। वो हमेशा ही जब भी भट्टी का ग्रुप आता है तो सभी को एक सुंदर गिफ्ट पहले ही दिन दे देती हैं। स्थूल गिफ्ट तो वैसे आपको मिलेगी ही, लेकिन उनकी गिफ्ट होती है कि आप यहां से फरिश्ता बनकर के जाओ और यहां ज्ञान सरोवर में रहते हुए फरिश्ते की ही ड्रेस पहन के रखो, जैसे सुमन बहन जी ने भी आपको रिमाइंड कराया। तो ये गिफ्ट, ये सौगात दीदी की तरफ से स्वीकार करें और सभी फरिश्ते की ड्रेस पहन करके ही यहाँ रहेंगे। स्वीकार है ये गिफ्ट, पसंद है सभी को, पसंद है ना सभी को। तो दीदी की तरफ से ये सुंदर गिफ्ट कि हम बिल्कुल फरिश्ते बन के पूरे ज्ञान सरोवर को सूक्ष्म वतन बना देंगे, हम बिल्कुल फरिश्ते बन करके ही चलेंगे, बैठेंगे, हर कार्य करेंगे। तो दीदी की तरफ से सुंदर गिफ्ट, दीदी हमारे बीच जरूर उपस्थित होंगी अभी भी सूक्ष्म में, हम सबको अपनी शुभ प्रेरणाएं, शक्तियां और आशीष दे रही हैं।